Sarvam Shalakya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Shri Guru Chakalpatarubhyasya Kripashri Vasdhevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Mahabhadanyaya Krishna Prema Pradajate Krishnaya Krishna Chaitanyanamne Gauratyase He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchan Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishvam Sute De Pranamami Hari Priye He Krishna Karuna Sindho Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Bhaktya Vihina Paradha Lakshe Chittasya Kama Vikadanga Madhye Kripamai Tvam Saranam Prapanna Vinde Namaste Gurave Gaura Chandraya Radhika Jai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Vairagya Juga Bhakti Rasam Priyatnai Apanyan Manu Vipsumandam Kripam Bhutirija Paradukha Dukhi Sanatanastam Prabhu Sri Chaitanya Mano Bhishtam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Sapadam Tavai Vasmi Vahitaya Vina Iti Vigyaya Radhe Tam Naimamacha Yatakhinkari Subhausa Khaluka Kuvani Nityam Parasya Purusarsya Sikhanda Mole Jasya Kadarasnithe Vishubhanu Jaya Satyuri Punya Bhavanam Ganumare आज बसंत पंचमी है। आज से बसंत ऋतु आरंभ हुई। बसंत ऋतु का और बसंत पंचमी का अपना खास महत्व है, बहुत बड़ा महत्व। विशेष करके हिंदू लोग बड़े आदर की दृष्टि से देखते हैं। आज के दिन सरसों के फूल और जौ की बालियां या गेहूं की बालियां लेकर के अपने प्रिय देवताओं पर चढ़ाया जाता है। आज से डंप करताल तरह तरह के वीणा इत्यादि वाद्य लेकर बसंत राग से होली आरंभ करते हैं। आज के दिन से यह एक उमंग भरी बसंत ये पंचमी है। जितने भी ज्ञान होते हैं, कीर्तन होते हैं, वो सब राधा और कृष्ण संबंधी है। पहले तो यही सब अधिक होता था, आजकल न जाने कैसी समाज की स्थिति बदल गई। नहीं तो पढ़े बड़े मंग में भर कर सब लोग गले में गले मिलकर अबीर लेते थे, सबके मुखों में लगाते थे, राधा कृष्ण को पहले इनके चरणों में देकर और तब ये बसंत राग से आज ही से आज के दिनों से जिन वृक्षों में लताओं में थोड़ा सा भी रस होगा, जिन लताओं में वृक्षों में या किसी भी चीज पशु प्राणी पक्षी चेतन में वो रस कुछ बढ़ता है और मालूम पड़ता है। आम्र में आम के पेड़ों में मंजरी अब दिखाई पड़ेगी। कुछ पहले ही बम्बे में तो हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था, किंतु आम रूप में सर्वत्र ही अब वो मंजरी दिखाई पड़े और क्वेल उन मंजरियों को ग्रहण कर खा करके कुहू कुहू शब्द अब आरंभ कर देंगे। यहाँ पर की आम्र कुंज होंगे, जिनके पुराने पत्ते हो गए हैं वो पेड़ लताएं पीछे करके अशोक वृक्ष इत्यादि आम्र वृक्ष अपने पुराने पत्तों को झाड़ देंगे धीरे धीरे और उसके बदले नए नए पल्लव सब लाल लाल कोमल कोमल पत्ते आज सब झाड़ नए श्रृंगार से मानो वो कृष्ण के इस बार संत रास में योगदान करने के लिए सब नए सज धज्ज से साज श्रृंगार कर उनको भी उत्साहित कर रहे हैं। प्रकृति ही एकदम बदल जाती है, ऐसी ये बसंत ऋतु वो आशा है। कृष्ण भी और गोपियां भी ब्रज में आज के दिन ही से रास आरंभ कर देते हैं, जिसको कहते हैं बासंती रास। एक शारदीय रास होता है, दूसरा होता है बासंती रास। ये कौन है क्या, थोड़ा सा उधर का करते हैं। इसी दिन में बंगाल में सरस्वती पूजा होती है। बंगाल कुछ शाक्त प्रधान देश है, शाक्त माने शक्ति की उपासना करने, तो राधा जी को शक्ति न लेकर के दुर्गा जी को वो और उनके दुर्गा और सरस्वती में उन लोगों का विचार से कोई अंतर विशेष नहीं। तो वहां पर उसको शिक्षा कि अधिष्ठात्री देवी के रूप में सरस्वती उनको दे देते हैं और बड़े सज्ज धज्ज से सरस्वती जी की पूजा होती है। और हम लोग शुद्धा सरस्वती की पूजा करते हैं। शुद्धा सरस्वती भगवान की प्रिय शक्ति है, जो जीवों को भगवान के तरफ में लगाती है, वो है शुद्धा सरस्वती। उसकी एक सेविका कहो अथवा उनकी एक प्रतिमूर्ति कहो, विमलानंद सरस्वती प्रभु का विमलानंद सरस्वती, विमला विमल मैंने शुद्ध शुद्धा सरस्वती, इसलिए विमलानंद विमल रूप से कृष्ण को आनंद देती हैं जो वो विमलानंद सरस्वती है। जगत में जिनका विश्व भर में प्रचार किया उनकी सेवा सब जगत के लोगों को दी, आज उन्हीं की कृपा से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके प्रिय सेवकों की कृपा से हम लोग आज बैठ करके यहाँ पर हम लोग हरि कथा शुद्ध रूप में श्रवण कर रहे हैं। ये सुजोग के मूल कारण बनी, इसलिए हम लोग शुद्धा सरस्वती जी को पहले प्रणाम कर और तब कुछ वसंत के संबंध में हम लोग कुछ परिवेशन करने की हम लोग चेष्टा करें। ऐसे तो कृष्ण के दैनंदिन ही रास हैं जिसमें शारदीय रस का और बासंती रस का रास का कुछ अपना अपना विशेष महत्व है। शारदीय रास सब नित्य सिद्ध गोपियों और साधन सिद्धा गोपियों को आनंद देने के लिए कृष्ण ने शारदीय रस रास आरंभ किया। कृष्ण का कोई भी कार्य, कोई भी लीला अपने लिए अपने आनंद के लिए नहीं होती। हम लोग जो कुछ भी कार्य करते हैं, यहाँ तक कि ठाकुर सेवा भी करते हैं, तो अपने आनंद के लिए कोई भी कार्य करते हैं। गुरु सेवा भी करते हैं किस लिए? उसी लोग से जो हमें अधिक आनंद प्राप्त है, हमको कुछ प्राप्ति हो। अभी भजन भी कर रहे हैं हम, तो उस स्थिति में हम लोग नहीं पहुंचे हैं कि कृष्ण को ही आनंद दें, वो अभी गौण रह जाता है। होना चाहिए वही प्रधान, किंतु हो जाता है ये। हम लोग कुछ भी करते हैं, मठ में आए हैं किस लिए, सेवा कर रहे हैं किस लिए, इसमें हमको शांति मिलती है इसलिए। गुरु और वैष्णव की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, धीरे धीरे बात करो, धीरे धीरे बात करें और जल्दी से जल्दी खोलने की चेष्टा करें। तो अभी अपने लिए जो कुछ हम करते हैं ये भक्ति नहीं है। जब यही धीरे 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 कृष्ण और कृष्ण के परिकरों की सेवा के लिए, प्रसन्नता के लिए होगी, तब तो ये भक्ति है। जो जितना ही इसको शुद्ध कर सकेगा कृष्ण के लिए, उनके परिकरों के लिए, राधा जी के लिए, तो ये शुद्धा भक्ति होगी, अन्यथा शुद्धा भक्ति ये नहीं है। तो कृष्ण तो स्वयं आत्माराम एवं आत्म कामों के भी चूड़ामणि हैं, उनकी कोई कामना नहीं, सब कामनाओं से तृप्त हैं। उनको किसी से कुछ ले करके और पूर्ण नहीं होना है। जीवों में यही चीज है, जीव पूर्ण नहीं है। उनका आनंद, उनका सुख, उनका ज्ञान, वैराग्य जो कुछ भी है अभी पूर्ण नहीं है। वो कृष्ण से, भगवान से या दूसरे लोगों से लेकर के उसको हम पूर्ण बनाना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, किंतु कृष्ण आत्मकाम और आत्माराम है, अपने में ही रमण करने वाले। किंतु उनमें भी कुछ रमण की इच्छा हो जाती है, हैं? क्यों हो जाती है? भक्तों की इच्छाओं को देख करके। रंतुं चक्रे भगवान पिता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका दीक्षा रंतुम मनश्चक्रे जोगमायां उपास्ते। रंतुम मनश्चक्रे, चक्र मैंने इच्छा की। क्या इच्छा की? इच्छा की नहीं, वो तो आत्मारा आपका काम है, किंतु इच्छा हो गई। कैसे इच्छा हो गई? उनके भक्तों में थोड़ा सा और आगे चले आओ, उनको बैठने के लिए जगह दे दो, आगे बैठ बैठ। तो आत्माराम और आत्मकाम होने पर भी उनकी इच्छा हो गई। कभी कभी कुछ लोग जाते हैं स्नान करने के लिए, एक आदमी की कुछ तबीयत, हमारी तबीयत मान लो कि कुछ नरम है, और देखता कि हम लोगों के परिक्रमा के यात्री सैकड़ों और हजारों नवद्वीप परिक्रमा में रुद्रद्वीप के दिन हजारों यात्री एक साथ पानी में उतर करके स्नान करते हैं, उसमें जो इच्छा नहीं करता ना उसको भी इच्छा हो जाती है। हम जितनी इच्छा करते हैं जो नहीं स्नान करेंगे, किंतु उसमें मान नहीं सकते, जरूर उसमें चले जाते। कोई भी ऐसा नहीं रहता उस दिन जो कि स्नान करना। ऐसे भगवान आप काम करने पर भी उनको हृदय में इच्छा होती है ना? क्योंकि वह रसिक है, रसो वही सह, गोपियों के हृदय में इच्छा होती है रास हो। क्यों? कृष्ण आत्म काम होने पर भी, आत्माराम होने पर भी आज उनको रस में डूबा दिया गया। कृष्ण को सुखी करने की लालसा से उनके अंदर में रास करने की इच्छा होती है, और इसीलिए कात्यायनी की पूजा की थी एक वर्ष पहले। इसी पिछला जो कार्तिक महीना गया ना, वही कार्तिक महीने में एक वर्ष पहले, और उस समय में उनको उन्होंने वरदान दिया था। उस वरदान को पूर्ण करने के लिए उनके हृदय में इच्छा थी। ऐसे दो रास प्रसिद्ध हैं, एक शारदीय रास और एक बासंती रास। शारदीय रास का वर्णन श्रीमद् भागवत में दिया गया, बड़ा सुंदर मनोरम, और दूसरे रास का वर्णन गीत गोविंद में हमारे श्री जयदेव गोस्वामी ने उसका वर्णन किया। एक और रास का प्रसंग है आश्चर्य रास प्रबंध, प्रबोधानंद सरस्वती जी ने इसका वर्णन किया है। एक छोटी सी पुस्तक है संस्कृत में, एक काव्य है, उसमें उन्होंने वर्णन किया। तो हम लोग थोड़े से बासंती रास के ऊपर में हम कुछ बोलने की चेष्टा करेंगे। तो उन्होंने जो कहा है उसको संक्षेप में मैं शारदीय और इसको वर्णन करके तब फिर मैं बासंती रास के संबंध में कुछ बहुत वर्णन करूँगा। तो रास माने होता है रस से, मंडलीबद्ध नित्य, और उसमें वाद्य यंत्र हो और नृत्य हो और शास्त्रीय संगीत हो, और उसमें स्वच्छंद रूप से परस्पर मिलन हो, नायक नायिका हो, एक नायक विविध नायिकाएं हो, तो उसको रास कहा जाता है। हल्लीसप नित्य इत्यादि भी शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं, किंतु कृष्ण के अतिरिक्त किसी भी भगवत अवतार में यह रास नहीं देखा जाता। कर सकते थे वो लोग, किंतु किसी ने इसको नहीं किया। फिर मनुष्यों की तो बात ही किया, इसलिए यदि मनुष्य ऐसा करते हैं तो उसको काम की संज्ञा दी जाती है और अनाचार इत्यादि कहा जाएगा। जब ऐसी कोटि कोटि जन्मों तक आराधना करने वाली संसारी कामनाओं वासनाओं को दूर कर गोपी भाव से भजन करके, जब कृष्ण की प्रसन्नता के लिए स्वतंत्र रूप में इसी तरह से मिल करके मंडलीबद्ध होकर विविध वाद्य यंत्रों के साथ में, शास्त्रीय संगीतों के साथ में, वाद्य यंत्रों के साथ में नृत्य करते हैं, तब यह रास होगा कृष्ण संबंधी ही जगह। इसलिए शास्त्रकारों ने केवल इसी को ग्रहण किया और बाकी को छटाई कर दिया, जिसमें अपनी प्रसन्नता, गोपियों की प्रसन्नता रास कृष्ण के लिए, कृष्ण का रास गोपियों के लिए, अपने लिए वह नहीं। और इसमें ऐसा प्रेम प्रबंधित हुआ कि आज तक किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं दिखा। इसलिए समस्त लीलाओं में कृष्ण की जितने भी लीलाएं हैं ये लीलाओं में चूड़ामणि, और ऐसा कृष्ण ने स्वयं कहा कि रास को देख करके, रास में सम्मिलित होकर के हमारा मन कैसा हो जाता है।
मैं जाने
हमारे मन में क्या क्या भावनाएं और कैसी उछलती हैं वो भावनाएं, जैसे दूध गर्म किया जाए और वो उफनता है, ऐसे कृष्ण का मन, कृष्ण के मन की तरंगे कैसे तरंगायित उसमें होती हैं। कहते कृष्ण मैं भी नहीं वर्णन कर सकता। उसमें गोपियां वर्णन कर सकती थी किंतु उनको देह की स्मृति है ही नहीं है, तो वो भी भला क्या वर्णन करेंगी। इसलिए कुछ लोगों ने, जैसे कि व्यास जी ने ध्यान में समाधि में उस चीज को देखा और तटस्थ होकर के देखा, नहीं तो मोहित हो जाते। जैसे देवियां मोहित हो गई, कृष्ण मोहित हो गए, गोपियां मोहित हो गई, यदि ये तटस्थ होकर के नहीं देखते तो ये भी नहीं दिख सकते थे, किंतु तटस्थ थे। इसलिए थोड़ा सा इन्होंने वर्णन किया। बस तो उसमें कुछ गोपियों को तो उन्होंने वरदान दिए थे, और आज के दिन नहीं शारदीय पूर्णिमा के दिन उन्होंने चंद्र को देखा। शरद ऋतु में चंद्र पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है, आकाश में धुआं बादल धूल धूल कुछ नहीं रहता, उसके वर्षा ऋतु में ही सब साफ हो जाता है। ऋतु भी बड़ी सुंदर होती है, न गर्मी न ठंडी, तरह तरह के फूल खिल उठते हैं। शाम का समय, चंद्र अब उगने वाले हैं, सूर्य जी अस्त हो गए हैं, चंद्रमा की लाल लाल किरणें पूर्व दिशा रूपी माननी या प्रेयसी को मुख में मानो अबीर लगा दिया हो। हमारे टीकाकार कहते हैं कृष्ण ने जब उनको देखा तो उनको याद आई, हम चंद्रवंशी हैं, चंद्रवंशी के मूल पुरुष ये चंद्र हैं। आज मानो हमें इंगित दे रहे हैं, हमारे हृदय में स्फूर्ति कर रहे हैं कि पूर्व दिशा सूर्य की पत्नी है, मैं उनके मुखमंडल में अबीर लगा रहा हूं। ये जो गोपियां हैं इनके मुखों में भी अबीर लगाने से तुम्हें कोई दोष ना हो, नहीं होगा। विशेष करके आप तो समस्त जगत के पति हैं, उनको देख करके ये प्रेरणा मानो हुई, वो प्रेक्षा करते हैं, और उसी समय में उनको याद आए कि हमने वरदान दे रखा है उन गोपियों को, जो कि कोटि कोटि जन्मों से तपस्या कर रही थीं और अंतिम दिन की वो उनकी आराधना में, जिस दिन अंतिम होने वाली थी पूर्णिमा के दिन, गोपियों ने जो नवेली गोपियां थीं, कन्या गोपियां थीं, उन लोगों ने आज राधा जी को, ललिता विशाखा ब्रज मंडल के जितनी गोपियां थी सबको निमंत्रण दे रखा है। या आज हमारी पूजा में आप लोग भी सम्मिलित हैं, इसलिए उस दिन उनकी पूजा की पूर्णाहुति में ललिता विशाखा राधा जी इत्यादि सभी उस दिन सम्मिलित हुई थी। वो पूजा नहीं कर रही थी, क्यों, उनकी तो शादियां हो गई थी पहले ही, इसलिए नंद के पुत्र हमारे पति हो ये कहने की उनको कोई जरूरत नहीं। नंद गोप सुतम
देवी पतिं मे कुरुते नमः।
तो इस दिन उनके निमंत्रण करने की वजह से वो सभी लोग एकत्रित हुई हैं, और उसी दिन कृष्ण सबके वस्त्र लेकर के गए, और इसके बाद में सबको वरदान दिया। उन्होंने सोचा कि आज ये सब देख करके उनके मन में परंतु मनश्चक्रे उन गोपियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन में उनको इच्छा है, बंसी वादन किया, सब गोपियां वहां पर आई। गोपियों को कहा कि आप लोग हमारा दर्शन कर चुकी और लौट जाइए, पतियों की सेवा करना आप लोगों का कर्तव्य है। गोपियों ने भी उनसे वाद विवाद किया, आहा आपके समान गुरु जगत में कौन होगा, आप हमारे गुरु को इतना उपदेश सुंदर समझाने वाला तो जगत में कोई है ही नहीं है, पतियों की सेवा करो इससे बढ़कर के और कोई हो ही नहीं सकता, तो आप गुरु हमारे हैं। किंतु शास्त्र में लिखा गुरु और भगवान जय गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागू पाओ, किसके पैर लगाओ। तो जिन्होंने गोविंद को बतलाया, उन्होंने पतियों की सेवा के संबंध में जो इतना सुंदर उपदेश दिया वो हमारे गुरु ठाकुर जी हैं, तो पहले हम गुरु ठाकुर जी की पूजा करके तब फिर अपने पतियों की सेवा में जाएंगे। आप गुरु जी हमारे हैं इसलिए पहले हमारी सेवा पूजा को अंगीकार कीजिए, और नहीं करते हैं तो अपने वचन भंग करने के वजह से आप ही के ऊपर में इसका अपराध लगेगा। जे जथांग माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्, आपका ये भी वचन है तो इसको भी पूरा कीजिए, जो जैसा भजन करता है। अरे भाई जिसके पास में खुद है वही ले आया आपको अपन, तो खुद ही ले लीजिए प्रसन्न हो जाइए, और जिसके पास में मेवा मिश्री पकवान है तो देता है तो उसको भी ले लीजिए। तो जो कुछ भी हम लोग ले आई हैं हम आपके पहले पूजा करते हैं, ग्रहण कीजिए, और नहीं तो आपको प्रत्यवाय होगा। कृष्ण वहां पर और कुछ युक्ति तर्क न कर सके, फिर रास हुआ, फिर अंतर ध्यान हो गए, राधा जी को लेकर के अंतर ध्यान हुए, और इस सब का वर्णन वहां पर सब दिखा गया है। आश्चर्य रास में भी प्रबोधानंद सरस्वती जी ने थोड़े से वैलक्षण के साथ में इस चीज को प्रदर्शन किया है, माने थोड़ा सा अंतर है, प्राय ऐसा ही है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने बंसी में उस दिन राधे राधे उच्चारण किया और सब गोपियों ने सोचा कि हमारे ही नामों को ये कहा किया था, क्लिंग श्रीमद् भागवत में
कलम जगौ बाम दिशा मनोहरम।
इसका अर्थ भी बड़ा सुंदर, कलौ कलौ मैंने बजाया, कलौ
कलम जगौ
जगौ
बाम
दिशा
मनोहरम,
कलौ दो सब अक्षरों के लिए क और मिलकर के क्या हुआ क्ल, बाम दिशा हर्ष जो स्वर है, बाम दिशा माने बाएं से चतुर्थ क्या हुआ ई हुआ ना, तकली हो गया। मनोहरम मन को जो हरण करता है, मन के अधिष्ठात्री देवता चंद्र है, मनोहर ना, मन के तो हुए चंद्र, उस पर चंद्र लगा दो, और हर की जह उसमें जो बिंदु है चंद्र के ऊपर में, चंद्र और बिंदु भी है, तो उसको जो हरण करता है उसके विचित्र भाव को जैसे मन को हरण करते हैं ना आनंददायक, ऐसे बीच में एक बिंदी होकर के जो चंद्र की शोभा को बढ़ा देता है वो है हरा, अर्थात तो बिंदी हो गई चंद्र बिंदु, तो हो गया कलौ मैंने बजाया, जगत को मुग्ध करने के लिए बतलाया बजाया, और सब गोपियां एकदम अपने आप आकर्षित होकर के क मैंने वहां पर क्या हुआ कृष्ण, अपने रूप से, अपने गुणों से, अपने भक्तवत्सल्य से, अपने रस से, अपने और जो उनकी विशेषताएं हैं, सबके चित्त को हरण कर दिया। भेजा दूती, दूती भेजा घर घर। कैसे भेजा? ऐसी नहीं आएंगी। लिंग का जो उच्चारण किया बंसी के माध्यम से, छिद्रों के माध्यम से, अपने हृदय का समस्त रस होठों से लेकर के ढाल दिया, सूखी हुई बंसी में, बांस की लकड़ी में ढाल दिया, ढाल करके और जरा जोर से फूंक दे दिया जैसे कि वो निकल जाए। अब फूंक देने से ही बड़ी विचित्र रूप में निकली उसकी, जो मुख से ऐसे नहीं निकलेगी। इसलिए वो निकल करके देखा जो विश्व ब्रह्मांड में हम इसके योग्य कोई नहीं है, इसको पार कर गई और इससे भी ऊपर उठ गई, कहां बैकुंठ तक को भी पार कर गई, द्वारका और मथुरा को भी पार कर गई, बल्कि अपने मधुर ये स्वर से सबको सुला दिया। सभी स्तब्ध होकर के, मोहित होकर के सो गए। ब्रज के जितनी भी महिलाएं थी प्रौढ़ा, वो भी अचेतन सी हो गई, उनको पता नहीं लगा। सखा लोग भी सोए रह गए और ये उनके कानों में पहुंची कहां। वो जो गोपियां था जिनके लिए उनको देना था, उनके कानों में वो शब्द पहुंचा और तब उनको उनके भीतर कानों में से जाकर, भीतर में जाकर देखा जे दरवाजा खुला हुआ है। चोर को जे दरवाजा खुला मिले तो कहना ही क्या है। बस वो भीतर में चली गई कान के माध्यम से, देखा जे यही दरवाजा खुला हुआ है, बस एकदम भीतर में गई और उसका सबसे अमूल्य धन जो था क्या, मन। मन में जो धैर्य था, गुरु लज्जा का जो भय था, जो कुछ था सबको चुरा करके जब निकलने लगी तो इन लोगों को पता चला जी हमारा मन न जाने कहां चला गया। देखा जी ये चोर आगे आगे जा रहा है, बस जिधर से वो शब्द आ रहा था बस उधर ही दौड़ी वो। हमारे यहाँ ये हरिनाम करते थे ब्रह्मचारी जी, उम्र थी करीब करीब 50-60 वर्ष की, हम जब आए मठ में तब तो वो कोने में मुख रख करके ऐसे हरे कृष्ण करते थे, पीठ इधर में रहती थी जो कोई उनकी दृष्टि में न पड़े। 100,000 हरिनाम नियमित रूप में करते थे। तो एक दिन हरिनाम कर रहे थे, चुपचाप बैठे हुए थे, इधर में किसी ने घर, कोई घर में घुसा और वहां पर रखे हुए कुछ चीज थे वो ले करके जब जा रहा था, कलकत्ता में ऐसे ही चोर होते हैं, तो वो ले करके जब निकल रहा था तो उनको खड़खड़ कुछ मालूम पड़ी, तो ऐसे बेमन से देखा जा रही ये तो वो बक्सा जिसमें पैसा वैसा है उसी को पकड़ करके जा रहा है। झट उठे, एक हाथ में हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम नहीं छोड़ा, अब दूसरे हाथ में वो धोती ऐसे एक तरफ में पहने एक तरफ में, वो धोती नीचे पड़ी हुई थी, उसी हालत में एक हाथ में हरिनाम की माला है और दूसरे हाथ में ये कपड़े पकड़ कर चोर चोर कहते हुए एकदम पीछे से दौड़े और लटपटा गए। उस समय होश नहीं रहा कि कैसे चले उसको पकड़े, कि वहां पकड़ना पीछे चलो, हल्ला किया, फिर लोग और लोग थे झटकों को पकड़ लिया। तो जिसमें इन्होंने बात बंसी का आदम किया जो जिस स्थिति में थी, शाम का समय, कोई पतियों को परिवेशन कर रही थी, कोई गाय का दूध दुह रही थी, कोई दूध औटा रही थी, कोई साज श्रृंगार कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी, जिस स्थिति में थे उसी स्थिति में एक मिनट की देरी नहीं तो चोर चला जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा, इसलिए उसके पीछे दौड़ी। आजगमु अन्नो अलक्षितम अलक्षितम अन्नो अलक्षितम, एक दूसरी न जान पाए, समय फुर्सत कहां, सब चल गए। अभी आधी आंख में ही अंजन किया, पूरा भी नहीं किया, इतना लगाया तब तक अंजन समाप्त हो गया, दूसरी बार लेकर के अंजन करेंगे तब पूरा होगा, बस अंजन हाथ में रह गया और आंखों में आधा रह गया, एक आंख में तो लगी नहीं, कोई कुछ उल्टे सुलटे जिसको विभ्रम कहते हैं, उल्टे सुलटे कपड़े पहन लिए, जिनका अंचल जमीन में गिरा था बस गिरे हुए लेकर के ऐसे ही चलते, होश किसी को नहीं, रास में पहुंची। इसके बाद में जो वर्णन हुआ है इसका तो सभी लोग जानते हैं, ये इसको कहते हैं साध्वी रास। कृष्ण को बाध्य होकर के उनके साथ में रास करना पड़ा। रास के बाद में प्रिया जी कुछ मान कर दिया, कृष्ण ने देखा कि और गोपियां हैं सौभाग्य मद से इछल आ रही हैं, हमारे समान और कोई सौभाग्यवान नहीं, और दूसरी ने देखा जो एक थी हैं, सबको बराबर प्यार करते हैं, कहते तो हैं तुम ही हमारी सबसे अधिक प्राण प्रिया हो, और यहाँ पर देखते हैं ये झूठा है, सबको एक सबके साथ में नित्य गीत कर रहा, इसलिए उनको हो गया मान और इनको हुआ सौभाग्य मत। बस कृष्ण वहीं से अंतर ध्यान हुए, और लोगों के सौभाग्य मद को दूर करने के लिए, प्रशमन करने के लिए, और उसको साथ ले लिया, पकड़ लिया और अंतर ध्यान हो गया, रास्ते छिप गए। गोपियां खोजने लगी, खोजते खोजती देखी पैर का छाप, बीच में एक किसी किशोरी का पैर का छाप, एक श्रेणी की गोपियां एक दल वाली समझ गई ये किसका ये चरण है, और चंद्रावली प्रवृत्ति के सखियों ने नहीं समझा जैसे किसके चरणों का ये छाप, तो वही कार्य अने आराध तो नून भगवान हरिश्वर जन्नो बिहाय जाम अने कर। ये गोपी निश्चित सबसे प्रभु की आराधना की है, जिसे सब गोपियों को छोड़ करके इसको साथ में लेकर के गए, और जो जानती थी देखी पैरों का चिन्ह, जो जिस गोपी की वो सेविका है या सखियां हैं उनके पैरों का चिन्ह जानती थी, वो तो बड़ी प्रसन्न हुई आज हमारी सखी को साथ में लेकर के गए, और जितनी जितनी आगे बढ़ती यही उनको आनंद और दूसरों को विरह हुआ। अरे यहां देखते हैं कि पैर बड़े दबे हुए हैं तो वो कहां गई, निश्चित रूप में वो थक गई होगी इसलिए उसको ऊपर उठा करके कंधे पर बैठा करके ले गए। थोड़ी देर के बाद में और गई, यहाँ पर किसी के बैठने का चिन्ह है, कुछ फूल गिरे हुए हैं और पैरों के आधे ही छाप, केवल पंजों के छाप हैं। ओ मालूम होता है उन्होंने कृष्ण ने फूलों को चयन किया, पैरों की एड़ी उठाकर और कुछ ऊंचे उठ करके दिया, और यहाँ पर जो फूल गिरे हैं उसके सिर का मंडन जरूर किया होगा। आगे बढ़ी तो देखा एक और विलाप कर रही है बड़ी सखी, अरे इसको लेकर के गए थे और इसी को छोड़कर के चले गए हैं, विलाप कर रही है, विलाप करते हुए देख करके उनको भी संवेदना हुई, इसीलिए कृष्ण छोड़ करके गए थे, नहीं तो उनको उसके प्रति ईर्ष्या हो जाती। एक साथ में बहुत तरह के कार्य करते हैं, बड़ी वो भी रोने लगी, अंत में उसको सांत्वना दे करके फिर गई। जयति तेधिकम जन्मना प्रजा तब कथा अमृतम तत्व जीवनम इत्यादि राष्ट्र की बहुत सुंदर चीजें वहां पर प्रकटित की। अंत में फिर कृष्ण मिले, मनमथ मनमथ रूप में कृष्ण आए, कुछ लज्जित हुए और बोले, ओहो सखियों हमको तुम जरूर कृतज्ञ कर रही, कृतज्ञ कह रही है, हम तुम्हें सब छोड़ करके गया। तो उन्होंने चार प्रश्न किए थे, उसका उत्तर भी बहुत सुंदर है, हम भी और समय में वर्णन किए, इसलिए हम संक्षेप में ये अशारदीय राष्ट्र का हम प्रसंग समाप्त करते हैं। कुछ आश्चर्य राष्ट्र प्रसंग भी कुछ इसी तरह का है, थोड़ा सा अंतर है, कभी हम उसका वर्णन करें। अभी हम लोग बासंती अरास के ऊपर में चल रहे हैं। यह देव गोस्वामी ने वर्णन किया, चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद स्वरूप दामोदर शिवास पंडित रथ यात्रा के प्रसंग में एकत्रित हुए हैं। फेरा पंचमी का दिन उस समय श्रीवासी जब देखा कि लक्ष्मी जी के परिकर जो उनकी दासियां थीं गोपियों को पकड़ पकड़ करके मार रही हैं और उनके आभूषण इत्यादि दंड के रूप में छीन रही हैं और उन्हें दंड दे रही हैं, बगल बजाते हुए बड़े आनंद से हंसने लगे। देखो ग्वालिन दू डौट करके खाती हैं और ये बराबरी करने जाती है लक्ष्मी की, आज लक्ष्मी जी ने अच्छी इनकी शिक्षा दी, कोड़ों से कपड़े के कोड़े बनते हैं और उन कोड़ों से उनको गोपियों को वो मारती हैं और उनको दंड लेकर लेती हैं, उनसे टैक्स लेती हैं। उस समय इसको देख करके शिवाज पंडित जी बड़े आनंदित, कहिए देखो तो अरे वृंदावन में क्या है, माला है तो गुंजा, आभूषण इनको कहाँ मिले, कभी दर्शन ही नहीं किया, हीरा जवाहरात और ये सब चीजें, केवल फूलों की मालाएं फूलों के अलंकार ये सब धारण करती हैं, तो कहाँ वहां का विराट वैभव और कहाँ यहाँ का तुच्छ वैभव। और उसी समय में स्वरूप दामोदर जी गोपियों की भावनाओं को और उनकी महत्ता को बतला रहे हैं, अरे गोपियों के चरणों में नूपुर कैसे हैं, लक्ष्मी जी जो सिर में धारण करेंगी गले में वो तो नूपुरों के काम में केवल लाती हैं, कल्पतरु के कल्पतरु हैं किस लिए, उनके जो फूल हैं बस अपने सिरों का मंडन करने के लिए लगाती हैं, उनको कोई चीज की जरूरत नहीं है, वहां का वैभव अपार है। इस तरह से वो वर्णन करते हुए गोपियों की महत्ता वहां पर वर्णन किया। महाप्रभु जी ने कहा जी ठीक है, सबसे ऊंचा गोपियों का प्रेम है ये मैं मानता हूं, जैसा आपने वर्णन किया लक्ष्मी जी से भी श्रेष्ठ, उनमें सबसे अधिक श्रेष्ठ कौन है, राधा जी, राधा जी का प्रेम सबसे उन्नत है। अजय कैसे, तो राश में सबको छोड़ करके गई, कृष्ण चले गए जिनके साथ में, यहाँ पर तो राधा जी को साथ में लेकर के गए थे ना, किंतु चोरी से गए, चोरी से क्यों गए, और गोपियों के डर के मारे चोरी करके गए ले गए, यदि सबके सम्मुख में ले जाते तो हम मानते थे राधा जी का प्रेम, हो सकता था कि चंद्रा जी को भी लोग लेकर के चले जाते चोरी से, चोरी से मैं नहीं सुनना चाहता, आप बतलाइए कि कैसे कृष्ण साक्षात रूप में राधा जी को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, ये हमको आप बतलाइए, तब ये राष्ट्र का ये वर्णन कर रहे हैं। वो लिखते हैं क्या, बिहरपी हरिरिह सरस बसंते, बिहरति हरिरिह सरस बसंते, नित्य जीवति जनेन समम सखी, विहित जनस्य दुरंते, यहीं से आरंभ करते हैं। हृदय में धुक धुकी मच रही है, किस चीज की? एक ऐसा चीज लिखना चाहते हैं जो जीवन में कभी नहीं लिखा और कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है। कृष्ण राधा जी के चरणों में गिरे हों ये कहीं नहीं, और वो जानते हैं कि ये कृष्ण कौन है। सर्वे सर्वेश्वर है, समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम, समस्त भगवान के भी भगवत्ता के भी मूल कारण मूल अवतारी है। वो अपनी शक्ति रूपी दासी के चरणों में गिरे ये तो उचित नहीं जानता, किंतु उनका हृदय कह रहा है मानो इसके बिना राधा जी मानेंगे नहीं, और ऐसा वो लिख नहीं सकते, इसलिए वर्णन कर रहे हैं। बिहरपि हरिरिह इह वृंदावने, कुत्र कहां पर? गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में जो चंद्र सरोवर है, यहां पर कि चांद चंद्र ब्रह्मा के दिन से एक रात तक, रात भर अर्थात एक दिन उनका कितने का होता है, कितने करोड़ युगों का, इतने दिन तक वहीं पर जिसको ब्रह्म रात्रि कहते हैं एक स्थान पर टिके रह गए उस रात को दर्शन करने के लिए, इसलिए उसका नाम चंद्र सरोवर। गौरी कुंड पास ही है, पास ही में कहीं एक दो मील के अंतर में है चंद्र सरोवर। मैं सबको ले गया हूं तो वहां पर हरी रिह यह चंद्र।